संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में श्री वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। गाथा 112 और 113 चलेंगी, पढ़ो।
जीवो भवं भवेश्वरि अरो अमरो वपरो भवेयनो किं दवत्तं पजदि णजहं अर्णो कहं होदि मणुवो न होदि देवो देवो वा मानुषो वसेदो वा एवं अहोज्यमाणो अणर्णभावं कथं लहरि परिणमित जिय नर देव हो यान्य हो पर कवि द्रव्यत्व को छोड़े नहीं तो मनुज देव नहीं है अथवा देव मनुजादिक नहीं ऐसी अवस्था में कहो कि अनन्य होवे किस तरह।
दो गाथाएं हैं परस्पर विरुद्ध। एक में ये कहा गया है कि ये आत्मा अन्य अन्य कैसे हो सकता है, दूसरी में ये कहा गया है कि यह आत्मा अनन्य कैसे हो सकता है, और उसके हेतु भी दिए हैं। परिणमित जीय नर देव हो, ये जीव परिणमित होकर मनुष्य से देव हो जाता है, या अन्न हो पर कभी भी वो या देव हो गए चाहे नरक में जावे चाहे त्रेंच हो गए, अन्न हो गए माने हमका कोई देव गति से ही ये मामला नहीं है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाए, है ना। परिणमित तो हो गए जिये नर देव हो या अन्न हो, पर कभी भी द्रव्यत्व को छोड़े नहीं। पर वो द्रव्य बना थोड़ी छोड़ देगा कि नरक में जाएगा तो द्रव्यत्व छोड़ देगा, स्वर्ग में जाएगा तो द्रव्यत्व थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। जब वो द्रव्यत्व को छोड़े नहीं तो फिर अन्न हो गए किस तरह, फिर वो मनुष्य से देव हो गया तो अन्न कैसे हो गया। तो आत्मा तो रहा ही ना, इस पर अपन ने कल परसों थोड़ा बहुत विशेष ध्यान दिया था कि वो द्रव्य पर दृष्टि डालने से आत्मा की कंटिन्यूटी ख्याल में आती है, और जब आत्मा की कंटिन्यूटी ख्याल में आती है तो जैसे ये मनुष्य पर्याय में ही बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, अथवा एक एक दिन में भी जो अंतर आता जा रहा है हमारे शरीर में हमारे इनमें पर्याय में, तो हमको ऐसा तो नहीं लगता है कि हम अन्न हो गए। महीना भर पहले हम 1 किलो कम थे, अब आज 1 किलो ज्यादा हो गए तो हम बदल गए, ऐसा तो होता नहीं। माने अपने में हम बोई के बोई हैं, ये प्रतीति बहुत दृढ़ता के साथ रहती है। और वो कहते रहती है तो कोई गलती होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि जनवाणी में एक अपेक्षा है, और वो कौन सी अपेक्षा है, वो जीवत्व की, ये जो जीव तब भी है और अभी भी है। हम तो ये कह रहे कि तुम्हें मनुष्य में जितनी इतनी परिवर्तन हुए और तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी आकुलता नहीं हुई कि हाय राम मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ ना। तो एक पर्याय बदल के दूसरी पर्याय में गया, मनुष्य देवगति में गया तो उसमें इतना हाय तो हुआ क्यों, नरक में जाए तो कह के नहीं हल्ला गुल्ला करे कह नहीं मुझे पसंद नहीं, ये तो इससे भी अच्छा शरीर, इससे भी सब अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, जो भी हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसके आधार से जो भी थोड़ा ही शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले जीव हैं उन सभी जीवों को निश्चित रूप से ये सड़ा गला शरीर जो इतने वर्ष पुराना हो गया है ये छूटेगा तो ये तो गारंटी है कि नया बनने वाला है, तो पुराने से एकदम नया हो जाएगा। तो ऐसे मकान पुराने से बदल के हम नए में जाते हैं तो हमको खुशी होती है कि रंज। यदि हमको ये भरोसा है कि हम बिना देह के नहीं रहेंगे, वो देह में इतना राग है तो देह आपको मिलेगी। दिक्कत तो ये होती है कि हमारी इस देह में एकत्व बुद्धि हो जाती है, जबकि ये देह तो हमसे कोई संबंध ही नहीं है। इसको तो हम कारागृह जेल कहते हैं और ना मालूम क्या क्या कहते हैं। तो ये देह छूटेगी और इससे अच्छी दूसरी देह मिलेगी तो लौकिक दृष्टि से भी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, और परमार्थ की दृष्टि से तो कर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो वही का वही रहा ना। उस आत्मा में जब मनुष्य पर्याय में था तो 10-5 गुण कम थे, और देह पर्याय में गया तो कुछ बन गए कि यहां कुछ ज्यादा थे और वहां कम हो गए। ऐसा तो होता नहीं, कैसा होता है। यहां अवैध ज्ञान नहीं था और वहां अवैध ज्ञान बढ़ जाता है क्या। और भी ऐसी बातें होती हैं कहीं कि तुम इसकी बात मत करो। जीव में जो अनंत गुण थे उनमें एक आध गुण बढ़ गया, एक आध गुण कम हो गया। सवाल तो ये है, इसलिए तो हम कहते हैं कि उसमें अपनापन करो जिसमें घटता बढ़ता नहीं है। जिसमें घटता बढ़ता है उसमें अपनापन करोगे तो रोने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है कि साहब वो हमद ज्ञान था वो चला गया। अच्छा नरक में चले जाते वहां भी मिल जाता है, अवैध ज्ञान ज्यादा अच्छा लगता है, है? क्यों नहीं साहब, भगवान के भी जन्म से ही तीन ज्ञान के धनी होते हैं, है? तो तीन ज्ञान ही तेरे को चाहिए तो वे तो नरक में भी मिलते हैं। उसी भाव के जिस भाव में नरक मिलता है ना, उसके लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं, क्यों? मैंने उसी में जिस कर्मों से फल से नरक में जाता है उसी से वो उसके अवैध ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो घटता बढ़ता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देवे तो अन्य हो गए किस तरह। मैंने वो अन्य नहीं होता है, अनन्य ही होता है ये कहना चाहते हैं। उसे इस प्रश्नवाचक की भाषा में उनने बात करी है। ऐसा भी कह सकते थे कि ऐसे जीव अनन्य ही होते हैं, बस खत्म। अब ये तो कहते हैं अन्य हो गए किस तरह, यही है कहां है। पहले में अन्य हो गए है ना, और दूसरी गाथा में मनुज देव नहीं है और देव मनुज नहीं है, अलग अलग है बिल्कुल। तो दोनों एक अनन्य कैसे हो सकते हैं। दोनों में ही प्रश्नवाचक उनने लगाया है, माने वो कथनचित अनन्य है और कथनचित अन्य है। अब ये जो गाथाएं में एक तरह से प्रश्न उठाया है, और फिर वो अगली गाथा में शांति जी के द्रव्यार्थिक नए से अनन्य है और पदार्थिक नए से अन्य अन्य है, उसमें चौदहवीं गाथा में ये बात बताइए, बोलिए कहां प्रकरण है कि साहब पर्यायार्थिक में मत देखो, दिव्यार्थिक में देखो तो तुम्हें सम्मदर्शन हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, मोक्ष चले जाओगे। कितनी कितनी चीजें जोड़ दी उसमें, ये तो सीधी सच्ची बात कह रहे थे। हमारा प्रश्न है कि अन्य हो गए किस तरह और अनन्य हो गए किस तरह। तो हम अगली गाथा में हमने दोनों की अपेक्षाएं बता दी कि इस तरह अन्य अन्य होता है और इस तरह अनन्य होता है ना। वो सरल गाथाएं हैं, मेरा तो मन नहीं लगता है ऐसी गाथाओं में अर्थ करने में। क्या अर्थ करें, क्या बताएं। टीका पढ़ते हैं। द्रव्यत्व भूत अनवय शक्तियों को कभी ना छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है। द्रव्यत्व भूत अनवय शक्तियां, अनवय से द्रव्य है ना, तो अनवय शक्ति को कभी नहीं छोड़ा, माने द्रव्यत्व को नहीं छोड़ा। ठीक है, द्रव्यत्व भूत, ये भूत लगता है ना, उसका अर्थ यही ऐसा अर्थ होता है। वो भूत पेट व्यंतर वाला भूत नहीं है, भूत माने एक प्राणी भी होता है, साधारण जीव को भी भूत बोलते हैं, पुराने का काल को उसको भी भूतकाल बोलते हैं। यहां एक ऐसा अपन कहते हैं ना कि कहीं चीज में भूत लगाते हैं तो उसका मतलब उससे तन्मय वो द्रव्यत्व भूत है ना, मैंने द्रव्यत्व ही है जिसका स्वरूप, ऐसी जो अन्वय शक्तियां हैं उनको कभी ना छोड़ता हुआ, ये द्रव्य कभी नहीं छोड़ता है तीन काल में हुआ द्रव्य, इसी का नाम सत ही है, वो इसी को सत कहते हैं। और वो विद्यमान हमेशा 24 घंटा रहता है, वो जो निबोध में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, वो जो मूल चीज है जो ना निबोध में छूटी और ना मोक्ष में कोई एक्स्ट्रा आ जाएगी, जिस दृष्टि से अंतर है निबोध में और मोक्ष में वो तो पर्याय है, और पर्याय तो प्रति समय छूटती है, न मालूम कितनी छूट गई हैं और भी छूटती रहेंगी, फिर मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर तो नहीं छूटेगी, फिर भी छूटती रहेगी, प्रति समय बदलती रहेगी, उसका तो स्वभाव ही बदलना है। लेकिन जो लौकिक दृष्टि से एक बात मैं कहता हूं कि वस्तु के स्वरूप में अपन लोगों के पक्ष में बहुत सुविधा है, पक्षपात जैसा लगता है, कैसा कि जीव संसारी से मोक्ष में जाता है और मोक्ष से संसार में नहीं आता, अब मोक्ष अच्छी चीज है संसार बुरी चीज है, तो ऐसा नहीं कि मोक्ष से संसार में आ जाए, तो बुरे से अच्छा तो होता है, अच्छे से बुरा नहीं होता, अनंत दुखी से अनंत सुखी तो होते हैं, फिर अनंत सुखी से अनंत दुखी नहीं होते, अल्प ज्ञानी से पूर्ण ज्ञानी तो होते हैं लेकिन पूर्ण ज्ञानी के बाद कोई अल्प ज्ञानी नहीं होता है। तो ये सारा जो स्वभाव में ही पड़ी हुई है ये चीज, तो जो हमारे पक्ष में है ना, तो ये पलटना हमारे पक्ष में कह रहा है ना, ये पलटता है तभी तो संसारी से जीव मोक्ष में जाता है, तभी तो मत ज्ञान से केवल ज्ञान होता है, तभी तो वितरागता से रागी होता है ना, तो ये परिणमन वस्तु का ऐसा स्वभाव है जो हमें निगोद से निकाल के मोक्ष तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। अब कितनी बढ़िया चीज है वो, अब उसको हमने हे मान रखा है, अनित्य 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 ऐसी गाल अनित्य बोलते ही मुंह बिगड़ जाता है, जैसे कुछ हो गया वो क्या है, और फिर अपने तो गुरुदेव ने पर्याय दृष्टि पर्याय मुढ़ाही पर समझा के पर्याय वैसे अपना अपन तोड़ो बिल्कुल, तो और भी ज्यादा हमारे हृदय में उसके प्रति अरुचि पैदा कर दी, तो वो सही तो है लेकिन वो वस्तु का स्वरूप देखो कि पर्याय बुरी भी होती अच्छी भी होती, चतुर्गति का भ्रमण रोककर मोक्ष में तो जाते हैं, मोक्ष से चतुर्गति में नहीं आते हैं, एक बात में नहीं लाखों बातों में, शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध तो होते हैं फिर शुद्ध से अशुद्ध नहीं होते हैं, तो वस्तु का स्वरूप ही हमारे पक्ष में है। अब वस्तु का जो स्वरूप, मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारे इतने अधिक पक्ष में है उससे ही हम अरुचि रखते हैं, वो तो हमारी अत्यंत रुचि का विषय होना चाहिए, हमारी अत्यंत रुचि का विषय होना चाहिए ना, लेकिन वो हमारे लिए वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, और अब और अध्यात्म का भी उसमें बल मिल गया कि वो तो बहुत चीजें ये है ये है ये है ये है, तुम उसको वो जाता है तो फिर जाते हो बैठ बैठ के रोते हो, इसके लिए आचार्य मना करते हैं कि उसका तो जाना ही स्वभाव है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जाना स्वभाव तेरे हक में है, क्या यदि ये नहीं बदलता होता है ना, जैसे मान लिया अभी कोई बीमारी है कि साहब कैंसर से और फिर ठीक तो होता है, फिर दोबारा कैंसर नहीं होता है, तो कितनी बढ़िया बात है। कैसा फिर भी हो जाएगा तुम सावधान नहीं रहोगे तो। हार्ट अटैक के बारे में कहते हैं ना कि सारा हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब कर दिया, लेकिन तुमको सावधान रहना पड़ेगा, घी तेल तो बिल्कुल बंद है, ये बंद है, वो बंद है, और तुम सावधानी से रहोगे तो 2-5 साल जी लोगे। तो हमको लगा कि क्या फायदा है इलाज, ऑपरेशन कराने का क्या फायदा हुआ। पहले तो वो समझता था कि जैसे मैंने एकदम एक वो हो जाऊंगा। जो हमारा ऑपरेशन हुआ था दादा का हमारा, तो ये बबलू के दिमाग में क्या जमा था, है बबलू यहां के नहीं अभी, के एक घबरा रहे होंगे दादा, बड़े दादा इलाम से। तो अरे दादा एकदम आप जाएंगे तो एकदम जवान होके आएंगे और ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी बातें हमको बोलता था वहां। क्यों? इसलिए कि हमको घबराहट नहीं छूटे। मैंने कहा ठीक है, हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं कि, लेकिन वो तो कुछ ऐसा तो हुआ ना, बीमारी निकल गई, 2-5 साल जिंदगी शायद बढ़ भी गई हो, किन्नमत पर्याय के हिसाब से तो नहीं बढ़ती है, बढ़ना ही होती है, तो ऐसा संयोग मिलता है जिसकी बढ़ना होती है उसको, जिसको नहीं बढ़ना होती है उसको नहीं मिलता है, हैं? लेकिन वो जो क्यों मैंने एक जगह कहा कि तुझे किसने बताया है ऐसा समझाना, ऐसा किसने बताया है? दादा ऐसा है, मनोवैज्ञानिक असर होता है, ये होता है, वो होता है, घबराते नहीं है, ऐसे हो जाएगा, अब हमसे भी ज्यादा जवान होके आओगे, जैसे होके आओगे वैसे हो जाओगे। मैंने कहा बेटा जवान होना किसको है? तो वस्तु के स्वभाव में ये जो पलटना वाला तत्व है वो उतना ही महान है जितना वो नहीं पलटने वाला तत्व है। नहीं पलटने वाला तत्व तो इसलिए बहुत महान है कि यदि वो नहीं होता तो हमारा ही नाश हो जाता, अपना नाश कौन चाहता है ना, सर्वथा ही नाश हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो वो नहीं पलटने वाला तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है और पलटने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार से मोक्ष होता है, मोक्ष से जीव संसार में नहीं आता। अब दिव्यत्व भूत अनवय शक्तियों को कभी ना छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है। द्रव्य के जो पर्याय भूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है उसमें भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्तियों से अन्वय शक्ति अच्युत रहती है। इस कारण द्रव्य अनन्य ही है, इसलिए अनन्यपने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। क्या कह रहे कि वो पर्याय जो पलटेगी तो उससे तू ये मत समझना कि तेरे वो द्रव्य स्वभाव को कोई खतरा है कि भाई वो एकदम पलटा पलटी होगी, क्योंकि वो द्रव्य स्वभाव भी ना पलट जाए, द्रव्य स्वभाव भी ना पलट जाए। इसलिए कहते हैं कि नहीं, वो द्रव्य स्वभाव कभी पलटेगा नहीं, माने उसमें जो अनन्यत्व का हेतु है वो हमेशा विद्यमान रहेगा, इसलिए वो द्रव्य वस्तु हमेशा अनन्य रहेगी। कौन कौन में अनन्य? दो पर्यायों में। कौन सी पर्याय में? दो में। उदाहरण के तौर पे कौन सी दी? हाँ, मनुष्य और देव पर्याय। कि मनुष्य पर्याय में भी वही है और देव पर्याय में भी वही है। ये तीनों चीजों का अत्यंत स्पष्ट उपयोगता इस महावीर वाले उदाहरण में, मारी जो महावीर वाले में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि जब हम मारीच के बारे में सोचते हैं कि उस सबसे पहले युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने जैन दर्शन तत्व का प्रचार किया, तो विरोधी तो अपन को बहुत नापसंद, आज गुरुदेव को कोई गालियां देता है कोई कहता है तो अपन को अच्छा नहीं लगता है ना, तो उस समय लोगों को कैसा लगा होगा जब देव हमें बाहर उनको इंद्रजालिया कहता होगा। कभी कभी शांति जी ऐसे मैं बोल रहे हैं कि साहब उसको रुकवा नहीं सकते थे, थोड़ा इशारा इंद्र को कर देते कि हटाओ इसे, क्यों फट जाता कि नहीं है, नहीं किया उन्होंने। अपन से भी लोग कहते हैं कि व्यर्थ का विरोध करने वाले हैं, बिल्कुल मतलब नहीं, कोई नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा नहीं कर सकते, क्यों? मैंने कहा इसमें लिखा है ना समय सार में कि एक देव दूसरे देव का कुछ कर नहीं सकता है, काय के लिए है? नहीं नहीं, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। आप नहीं करें तो हम लोग करें, हम लोग करें, थोड़ा इशारा हो जाए आपका बस। कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो, जब ऋषभ देव ने उनका सग्गा पोता था और उनके सामने ही खड़ा समोषण के बाहर वो उन्हें इंद्रजालिया कह रहा था, जादूगर है तुमको बुद्धू बनाता है, क्यों जादूगर क्यों कहते थे ना, क्योंकि अतिशय बहुत थे ना वो, समोषण में अतिशय होते हैं ना, तो उन अतिशयों की वजह से तुम प्रभावित हो के जा रहे हो, तो वो जादूगर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नियति का एकांत, ये सबसे पहले मारीच ने इसका प्रचार किया था। और अपन पर जो क्रमबद्ध बालों पर जो आरोप लगाया जाता है वो नियत की एकांत का ही लगाया जाता है। गोमरसार में नियतवादी को ऐसा कहा है, वैसा कहा है, ऐसा कर करके कहा है। अब उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि वो नियतवादी सिर्फ सारा कारण नियति को ही मानता है और बाकी चार संवाय की उपेक्षा करता है। हम तो चिल्ला चिल्ला करके चार संवाय और बताते हैं, बात करते हैं, हम नियतवादी कैसे हो सकते हैं? माने सब कुछ नक्की है, ये समझाता था सामने ऋषभ देव के सामने दुकान खोल के कौन मारीच। खैर अपन को तो अभी इतनी बात करनी है कि वो उनका विरोध करता था और हम यदि तीर्थंकर के भगत हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे विरोधी है, यदि तीर्थंकर हमारे राग के पात्र हैं तो वो निश्चित रूप से देश का पात्र है, है ना। अब महावीर हो गया तो जैसे ऋषभ देव जैसे महावीर, अपन तो बोलते हैं वृषवादि वीरांतेभ्यो, ऋषभ से लेकर वीर हैं अंत में जिनके। हमने सोलापुर में एक शिविर लगाया था सर्दियों में, है मालूम आपको शांति जी, आप गए थे कि नहीं गए थे? मैंने सर्दियों के दिन में, गर्मियों में लगता है ना प्रशिक्षण शिविर, दो प्रशिक्षण शिविर हमने सर्दियों में भी लगाए, साल में दो दो लगाए, इसलिए तो 50 हो गए, हमें 48 वर्ष में शिविर 50 कैसे हो गए? एक भी शिविर हमारे बिना तो हुआ ही नहीं, तो दो सर्दियों में लगाए, दोनों महाराष्ट्र में लगाए, महाराष्ट्र में एक मलकापुर में और एक सोलापुर में। धनकुमार जी को बहुत उत्साह था, धनकुमार जी हमारे साथ बहुत काम किया है इसमें, तो उनने कहा कि दादा जी साल में दो लगाते तो आप वहां उत्तर भारत में हो जाता है, फिर हम कब तक इंतजार करें, तो आप सर्दियों में लगा दो। तुम लोगो तो कैसे हुए, कैसे लग गया सोलापुर में, कैसे लग गया, कौन आ गया उस वक्त पढ़ने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कोई आया ही नहीं, तो वहां एक भाऊ साहब थे हीराचंद अमीचंद गांधी नाम था उनका, तो वो उनके इंजीनियर कॉलेज है, सब उनके हैं, सैकड़ों उसमें प्रोफेसर है, सैकड़ों आज भी हैं, तो उनने सबकी छुट्टी करके और सबको हमारे प्रशिक्षण शिविर में बैठा दिया और इंजीनियर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर लगा दिया, इंजीनियर कॉलेज के सब प्रोफेसर इसलिए सर्दियों में लग गया। इस मलकापुर में भी ऐसे कोई कारण होगा, तो वहां बस मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं कि वहां दो मुनिराज थे, और जिस मंदिर में हम दर्शन करने वगैरह जाते थे उसी में दोनों ही मुनिराज ठहरे थे, एक का नाम था वृषभ सागर और दूसरे का नाम था वीर सागर। विसागर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने वो दर्शनाचार्य की टीका लिखी है, समय साथ की दर्शनाचार्य की टीका की हिंदी टीका की है, वो वीर सागर जी ने। अच्छे आध्यात्मिक थे, मतलब बहुत अपेक्षाकृत बहुत अच्छे थे, मेरा मतलब कहने का। तो वे वीर सागर उसी वक्त उसी साल मुनिराज हुए थे, वे डॉक्टर थे, वे डॉक्टर से उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, एमबीबीएस डॉक्टर थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली तो उनका नाम रखा गया था वीर सागर। और ये ऋषभ सागर थे तो वे पुराने उम्र के थे, तो मैं उस वक्त बोला करता था विश्ववादी वीर अंतर्द्यो क्योंकि हमको तो ऋषभ सागर भी है, वीर सागर भी है, दोनों ही हैं हमारे पास। तो उस वक्त ऐसे लोग नहीं थे पागल जैसे आज हैं, हम तो आराम से बैठते थे, मिलते थे, सब बात करते थे, वे भी हमारे शिविर में आते थे, सुनते थे, प्रशंसा करते थे, वो सारी व्यवस्था वही भाऊ साहब बोलते थे उन्हें, हीरा लाल अमीचंद गांधी को, उनकी भी वही करते थे और हमारी भी वही करते थे। तो वो ऋषभ सागर आदिनाथ से, तो आदिनाथ का विरोधी हम उसे कैसे माफ कर दें, और आदिनाथ की ही दुकान पर बैठने वाला उनका उत्तराधिकारी बिल्कुल वैसा ही तीर्थंकर महावीर, तो उनसे कैसे राग नहीं करें। माने वो मारीच देश का पात्र और महावीर अत्यंत हमारे राग का पात्र, ये दो बातें बहुत स्पष्ट दिखती हैं ना। छोड़ो हमें जरा मारीच महावीर को हटा दो, ऐसे कोई आदमी विरोध करता था ऐसा समझ लो, और कोई आदमी ने धर्म का प्रचार किया तो भी हमारा यही परिणाम होता ना। फिर जब ये मालूम पड़े कि ये जीव ये वो ही है, ये मारीच ही महावीर है, तो हमारे राग और देश दोनों कम होंगे कि नहीं होंगे। देखो देश तो कम हो गई कि जी दो आदमी थोड़ी हैं, ये वही जीव है, तो दोनों में जो वो समता भाव प्रकट करता है ये कौन सी दृष्टिकोण है, उसे हम के तीन तरह से बोलेंगे कि मारीच मारीच है महावीर नहीं, महावीर महावीर है मारीच नहीं, फिर मारीच ही महावीर है और महावीर ही मारीच है, तीन तीन वाक्य बोलेंगे ना, ख्याल है ना। तो मारीच ही महावीर आएगा तो कहेगा एक ही जीव की ऐसी परिणति है, एक दिन ऐसा होता है एक दिन ऐसा होता है, क्या राग द्वेष करना है। इसलिए वो द्रव्यार्थिक न्याय का जब उदय होता है तो वो वीतरागता का पोषक होता है, जब पर्याय सक का न्याय होता हम उतने से हिस्से को पकड़ते हैं ना। वो जो मारीच का जीवन कितना लंबा चौड़ा है, बोलो बोलो, अनादि अनंत है ना, कोई भी जीव अकेला उनकी बात थोड़ी है। अब अनादि अनंत उनका जो जीवन है उसमें से हमने इतने से को पकड़ा, वो मारीच वाले हिस्से को, उसको भी पूरा कहां पकड़ा। पहले तो हम उससे राग करते थे, कब, जब ऋषभ का पोता पैदा हुआ था करते थे ना, जब उसने ऋषभ देव के साथ दीक्षा ली थी, ये तो अभी अभी कल की बात है जो द्वेष करने लगे जब उसने वहां उनका विरोध शुरू किया है। आप समझ गए ना, मैंने मतलब कहने का है ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ऐसी जो हमारी पर्याय दिन रात होती हैं, ये आपस में आप इतने लोग हो तो कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है, तो वे परमानेंट ना कोई किसी का शत्रु है ना कोई किसी का मित्र है। तो सही बात तो क्या है कि कोई किसी का कुछ है ही नहीं, क्या कोई किसी का कुछ है ही नहीं ना। ऋषभ देव को अभी आप ऐसे विचार करो, कभी कभी मैं बहुत सोचता हूं, तुम लोग भी सोचना सीखो कि ऋषभ देव भगवान वहां बैठे होंगे जब उनने कही होगी कि ये मरीच महावीर होगा, तब उन्हें ये पता नहीं था कि इस बात का इस मरीच पे इतना बुरा असर पड़ेगा। मालूम था कि नहीं था हैं? और उसका क्या रिएक्शन आएगा, ये मेरे ही सामने दुकान खोल के खड़ा होगा। तो इतना विवेक तो अपन में भी होता है, अपन को पता हो कि ये सामने विरोध में खड़ा होगा तो अभी चुप रहो। चुप क्यों नहीं रहे, क्यों बताया उन्होंने? उसका अच्छा परिणाम तो निकलने वाला था नहीं, ये तो उन्हें पता ही था है? कि वो बाद में महावीर हो गया। अरे बाद में महावीर हो गया तो उसी वजह से थोड़ी हो गया, उनकी कहने की वजह से। वो तो उसने कितने कितने पापड़ बेले और वो मुनिराजों ने जो समझाया उसमें तो वो निमित्त है। ऋषभ देव का वो वाक्य थोड़ी निमित्त हुआ, उस वाक्य से तो विरोध ही पैदा हुआ। इसलिए मेरे को विचार आता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, थोड़ा सोच समझ के तो बोलना चाहिए। हमें भी बहुत समझाते हैं कि थोड़ा सोच समझ के तो बोलो कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा सोच के बोलो। लेकिन नहीं सोची उनने, उनमें सोच थी ही नहीं, हम क्या करें। सोच तो मति ज्ञान को बोलते हैं और उन्हें मति ज्ञान था ही नहीं, उन्हें तो केवल ज्ञान था ना। समझने कि नहीं आए तो उन्हें सहज भाव से दिव्य ध्वनि में आई, वो निकल गई बात, बस खत्म। और जो होना था वो हो गया, उन्हें सब पता था, लेकिन उनने कुछ भी उसमें बदलने की कोशिश नहीं की, ना तो कहने में बदलने की कोशिश की कि मैं नहीं कहूं, और ना बाद में कुछ भी नहीं किया। ये कितना बड़ा आदर्श है कि तुम्हें भगवान बनना है तो क्या करना होगा है? मैं जो सहज भाव से है और जब जिस आना है वाणी में आ गया। दिव्य ध्वनि कितनी स्वतंत्र है और भगवान ऋषभ देव का भी उसमें कितना हस्तक्षेप नहीं है, है? क्या मैं उदाहरण देता हूं, ऋषभ देव का तो अभी आगे ही दिया है, लेकिन मैं नेमिनाथ का देता हूं। अब मैं नेमिनाथ का दूंगा तो तुम समझोगे फिर नेमिनाथ घूम रहे हैं दिमाग में, लेकिन मैं समझाने के लिए बोलता हूं कि वो जो बोलते हैं कि नेमिनाथ ने जब ये कहा कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, पहले भी सुना होगा मेरे मुख से, तो उस वक्त उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए था। ऐसा मैं खुद ही बोलता हूं कि यहां यदि इतने लोग बैठे हैं और वे सब द्वारका के हैं, द्वारका में ही उनकी दुकानें हैं, द्वारका में ही मकान हैं, द्वारका में ही सब रिश्तेदार हैं, सब बाल बच्चे हैं, सब उनका जो कुछ भी है वो सब द्वारका के अंदर ही अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। और द्वारका के नाश का मतलब सबका नाश होना, और वो तो कह ही दी कि सिर्फ श्री कृष्ण और बलदेव बचेंगे, उनके मां बाप भी नहीं बच पाएंगे। तो हरेक का नंबर तो आ गया कि तुम्हें तो नष्ट होना ही है, समझना। तो यदि ये सुन के और किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो क्या होता, उसका जिम्मेवार कौन होता, ये मैं कहता हूं। पहले सुना तुमने मेरे मुख से, तुम्हारी उम्र कितनी है जो तुमने सुना होगा? मैं तो 60 साल से कहता हूं है? क्या कि किसी का हार्ट फेल होता हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? और इसका उदाहरण ऐसा देता हूं कि एक डॉक्टर को दिखाने हम जाते हैं और हम कैंसर है और कैंसर हम 6 महीना में ही मर जाने वाले हैं, ऐसा डॉक्टर को बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ जाता है तो वो हमें बताता नहीं है। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, दवाई दिखा दोगे ठीक हो जाओगे, ऐसा ऐसा कर करके हमको भगा देता है। और फिर हमारे माँ बाप को, जो भी हमारे घर में होते हैं बाल बच्चे पत्नी, उनको कहता भाई मामला बहुत गड़बड़ है, अब ऐसा करो कि इनको तुम बच तो सकते नहीं है लेकिन कम से कम तकलीफ हो, इनकी सब बात मानो, कामधान धंधा सब बंद करे और एकदम सारी अनुकूलता इनको तुम बरतो, उसको ये कह देता है, तो इतनी समझदारी तो उस डॉक्टर में है, नेमिनाथ में इतनी भी नहीं थी। ऐसा क्या बताना है कि भाई बताना नहीं है तो भी हमें पता भी चल गया तो भी हमें बताना नहीं। अरे 12 साल बाद जो होगा सो हो जाएगा, अब 12 साल तो हमें शांति से रहने दो, तुमने तो ये 12 साल भी हमारे खराब कर दिया, अब हम शांति से रह पाएंगे क्यों? समझ आया कि नहीं आया? ऐसा मैं प्रश्न उठाता था, आध घंटे तक प्रश्न उठाता था, फिर 2 घंटे तक उसका जवाब देता था। कई दफे किया मैंने ऐसा, सीधा सरल 1 मिनट का जवाब क्या है कि हार्ट अटैक हो जाता तो क्या होता, यही समस्या है ना। क्यों हुआ तो नहीं आया है कहीं कि 4 आदमियों को हार्ट अटैक हो गया, 5 को कैंसर हो गया, 6 के जुकाम हो गया, 5 बेहोश हो गए, ऐसा तो नहीं आया। आया तो ये है कि इतने लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली, इतने लोगों ने अमृत ले लिए, इतने लोगों को सम्मान की प्राप्ति हो गई, ये आया ना। उस पुराण में पढ़ के देखो तो हो जाता तो, ये कल्पना में क्यों जाते हो? उन्हें पता था कि इसका कोई खराब असर पड़ने वाला नहीं है। क्या इसके लोगों को ये वैराग्य में ही निमित्त बनेगा, ख्याल में है ना। और इनने फिर मैं कहता हूं वो आदिनाथ को फिर लेता हूं कि सोच सोच के कहां बोलते हैं कि ये नहीं सोचा ये नहीं सोचा, तुम तो जरा ये सोचो कि उनका सोच है कहां, ये तो केवल ज्ञानी है और दिव्य ध्वनि के भी कर्ता वो नहीं है, समझे ना। दिव्य ध्वनि तो अपने आप खिरती है, उसमें भगवान उस वाणी के कर्ता नहीं है, क्यों? वाणी तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, भाषा बगाना का कार्य है, और वो तो आत्मद्रव्य है, उनके कर्ता नहीं है। पर इसमें एक ही तकलीफ है, इसलिए हम कर्ता कहते हैं किसी भी नए से, कि फिर वाणी की अप्रमाणिकता हो जाती है, वाणी की प्रमाणिकता कैसे खड़ी रहेगी? समझ में आया ना। तो वाणी की प्रमाणिकता है क्योंकि वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, वो सर्वज्ञ की वाणी है तो उसमें कोई ऐसी झूठ बात नहीं आती, समझ में आए ना। इसलिए ये बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऋषभ देव, अरे तुम कहते उन्हें सोचना था कि ये खराब हो जाएगा, तो वे नहीं कहते ऋषभ देव तो फिर वो तो अंत तक रहता ना, और शायद उसी भाव से मुख चला जाता, थोड़ा अच्छी तपश्चर्या करता तुम कि अरे भाई उसका एक एक समय का भविष्य उनके ज्ञान में झलक रहा था, नया थोड़ी कुछ होना था। उन्हें ऐसा डर लगता कि कहीं ऐसा हो गया तो मैं नहीं कहूंगा तो ये मेरे पक्ष में ही बना रहेगा, ये विरोध में नहीं जाएगा। ये हम जो विकल्प वाले ज्ञान राग वाले जीव हैं, ये उनकी ऐसा विकल्प जाल उनके खड़ा होता है। क्या वो उस विकल्प जाल से पार नहीं हो पाते हैं? वो तो निर्विकल्प का मार्ग है, वो जो मुक्ति का मार्ग है वो तो निर्विकल्प का मार्ग है। वे तो निर्विकल्प थे पूरे, सहज वस्तु का स्वरूप था और वो सहज आया, वस्तु वाणी में आया। इतने जीवों को एक साथ दीक्षा लेने का काल पका होगा एक साथ, तो इसके लिए एक साथ निमित्त भी तो एक साथ ही होगा ना, उसके पांचों संवाय एक साथ ही तो होंगे ना। तो 4 संवाय उनके एक साथ पके परमात्म, तो उनकी दिव्य वाणी भी उनके एक साथ पकी, उसमें निमित्त बनी। मैं तो जैसे वो नमक मिर्च लगा के बोलता हूं उसमें कि वहां कुछ लोग बैठे थे जिनने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्या जो कुछ मन में आता है सब बोलते हैं, द्वारका जल जाएगी, द्वारका जल जाएगी, कैसे जल जाएगी? जब तक हम बैठे हैं जब द्वारका कैसे जल जाएगी? खैरियत दुकान जोर का जल जाएगी। ऐसा भाव किन्हीं के अंदर में आया होगा कि नहीं आया होगा, किन के अंदर आया होगा, आप समझे ना। कि विरुद्ध भाव के जिन्हें मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ना था और अभी संसार काफी बाकी था, नरक मरक की तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, बहुत अभी बहुत भटकना था कुछ काल तक संसार में, तो उनको ऐसा भाव आएगा। और वे इंतजाम भी किया उनने, उनने बोला दीपायन मुनि वहीं बैठे थे, जब उनने सुनी कि दीपायन मुनि के क्रोध से द्वारका जलेगी तो सब दीपायन मुनि की तरफ देखने लग गए। अब वे घबराए क्या करें, श्री कृष्ण ने बुलाया। सुना आपने, यहां साहब सुना, क्या सोचा? क्या साहब मैंने तो ये सोचा है कि मैं यहां से अभी निकलूंगा समोसन से और द्वारका की सीमा के बाद सैकड़ों मील दूर यहां से चला जाऊंगा, इसके आस पास ही नहीं रहूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से द्वारका बर्बाद हो। ठीक सोचा तुमने, यदि नहीं सोचते तो कुछ हमें सोचना पड़ता। समझ गया ना, तो वो इस बात में व्यवस्था में लग गए, बराबर 12 वर्ष तक पक्की व्यवस्था करी। दीपायन तो बेचारा अपने आप ही चला गया था, लेकिन शराब तो घर घर में घुसी थी ना, तो उसे निकलवाई, सब जंगल में फेंकवाई। मैं ऐसा कहता हूं कि गुजरात में 2 बार शराबबंदी हुई थी, है ना? कौन सी 2 बार? एक बार तो जब कि जब श्री कृष्ण ने करवाई थी वही द्वारका उसकी विदेश मिल जाएगी, और एक बार जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में शराबबंदी करवा दी थी। वहां गवर्नमेंट बनी थी ना सर्वोदय वालों की, तो उस वक्त शराबबंदी वहां हो गई थी, लेकिन भाग्य से दोनों दफे बस अपनी जान बचाने के लिए है, शराब के अंदर जो अनंत जीव हैं उनकी जान बचाने के लिए किसी ने नहीं सोची क्या कि उनकी जान बचे, इसके लिए नहीं हुई तब भी कि हमारे द्वार का नष्ट नहीं हो। आप देखें कैसे होती है ये बात, नेमिनाथ की ज्ञान में आई होगी कि नहीं आई होगी, कि ऐसा ऐसा इंतजाम होगा, ये दीपेन में यहीं बैठा रहेगा आग जलाने के लिए, कि दूर भग जाऊंगा तो फिर कैसे जलाऊंगा, ऐसा सोचा होगा क्यों? अरे उन्हें फिर सोचने की बात करते हो तुम, उनके तो इस ज्ञान में जो कुछ हुआ वो सब जलका था, और उन्हें उनमें कुछ करने का विकल्प ही नहीं था क्योंकि वे तो विकल्पातीत थे, उनके वे तो विकल्पातीत थे, वो विकल्प से पार हो गए थे और हम विकल्पों में उलझे रहते हैं। मैंने कल ही पढ़ा है कि बलदेव ने ऐसा पूछा कि हे भगवान ये द्वारका इतनी बढ़िया द्वारका बनी है ये कब तक रहेगी? क्या उनको क्या सूझी? अपन सोचे ये जयपुर कब तक रहेगा? किसी को ऐसा विकल्प आता है कब तक रहेगी और श्री कृष्ण का राज्य कब तक रहेगा? त्रिखंडी राजा है, ऐसा प्रश्न किया मैंने, पर मैंने सोचा ये क्या पूछ रहे, ऐसा तो विकल्प किसी को आता ही नहीं है, कोई अच्छे से अच्छा ज्योतिषी आ जाए कोई आ जाए हम उसे ये पूछते हैं कि जयपुर कब खत्म बर्बाद हो मैं? फिर उन्होंने बताई, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया तो उन्होंने बताया ऐसी बात चलती, तो मुझे कोई ये पता लगता है ऐसी वास्तव में तो बात ऐसी है कि तीर्थंकर में कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता, पर्सनल बातचीत नहीं होती, ना कोई पूछता है ना कोई जवाब देता है। ये तो प्रधान योग की स्टाइल है, तो उसमें ऐसा लिख देते हैं। क्या होता है कि उनकी देवध्वनि खिलती है तो लोगों के हृदय में 60,000 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों के समाधान ऑटोमेटिक हो जाते हैं उन दिव्य ध्वनि के माध्यम से निर्मित होती है। बस इतनी ऐसी बात है, और कोई वहां बात थी तो कुछ होती नहीं है। ऐसे है ना, जैसे कि तुम जैसे मैंने 363 देखे, सुना हुआ जी 363 365 क्यों नहीं देखी, दो और देख लेता। क्यों कि साल में दिन 365 होते हैं ना, तुमने 363 देखे का क्या मतलब कि भाई जैन दर्शन में 363 मिथ्या मत होते हैं। तो कौन से हैं, तो गोमर साल में देखो फिर वो, तो इतने फलाने के लिखे ना इसमें, इसका गुणन फलन कर दो इसमें, ये गुणन फल के हिसाब से होते होंगे मिथ्या मत, इतने नियतबाजी, इतने पुरुषार्थवाजी, इतने ऐसे सब उसमें बताए हुए हैं। माने वो काल्पनिक है, माने एक्चुअल नहीं है। तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर थे, भाग्य की बात है कि जितना तर्क मैं करता हूं उसे चौगने वे करते थे, वे भी इसी टाइप के आदमी थे, और उन्हें कोई मेरा जैसा विद्यार्थी नहीं मिला था, मुझे उन जैसे कोई गुरु नहीं मिले थे, तो खूब होती थी हमारी। तो वे बोले कि महाराज तुम कह रहे हो कि 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख, 4 प्रकार के। मैंने टोडरमल जी ने कहे तो इनके कोई गांव बसे हैं, ये व्यवहाराभासी कहां रहते हैं, दिल्ली तरफ होते हैं, कहां होते हैं, निश्चयाभासी गुजरात में होते हैं, नहीं ऐसे गांव तो नहीं बसे हैं। तो वो बोले कि इसका मतलब ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि एक काल्पनिक है, समझ रहे हैं, माने ये एक्चुअल जमीन पर नहीं है। नहीं क्या कह रहे आप कि ये है ही नहीं, नहीं है तो कि वो ऐसे ही भेद हैं जैसे भाई गोमर साहब ने बताया कि इसका गुणा उसमें कर दो इसका गुणा, माने इतने नए होते हैं, किसी व्यक्ति का इस नए का एकांत हो सकता है, किसी में इस नए का एकांत हो सकता है, कोई क्रियाकांड को ही मुक्ति का मार्ग मान सकता है वो व्यवहाराभासी है, कोई आत्मा आत्मा की बात करते रहो को आजीवन में कुछ भी नहीं हो वो निश्चयभाषी है, ऐसे लोग इन जैनियों में ही हैं और उनके अलग गांव नहीं बसे, और कोई ये नहीं कहता कि मैं निश्चयभाषी, ऐसा नहीं लिखता, ऐसे बने हुकुमचंद जैन ऐसा लिखते कि नहीं लिखते हैं, ऐसा बने मैं हुकुमचंद निश्चयभाषी ऐसे नहीं है, समझ गया ना। भगवान महावीर के समय में 4-5 लोग ऐसे थे जो अपने को सर्वज्ञ कहते थे, उनमें एक गोसालक था, मक्खली गोसाल उसका पूरा नाम था, क्या ना मक्खली गोसाल। तो ऐसे लोग हैं आज भी गुजरात में जो अपने को गोसलिया कहते हैं, वे कहते कि हमारा गोत्र गोत्र वोत्र कुछ नहीं है, ये गोसालक के शिष्य हैं वे लोग, वे जैनी नहीं है। आज तो ज्यादा जैनी बन गए, लेकिन वो जो महावीर के समय गोसालक था वे उसके शिष्य थे, तो वे अपने को गोसलिया कहते थे, जिसे अपन जैन कहते हैं ना, जिन्होंने भगवान के भगत सो जैन, ऐसे वे गोसलिया थे। तो ऐसे अलग अलग थे, मक्खली गोसाल अपने गोमर साल में लिखा ना, मस्करी किल मुक्ता नाम मन्नते पुनरागतम, कि मस्करी मत वाले, मस्करी माने वही मक्खली, मक्खली माने वही गोसलिया, मक्खली गोसाल वो ऐसा मानते हैं कि वो मोक्ष में जाते हैं फिर लौट के आ जाते हैं, वैसे कहते हैं ना कि वो कौन सा आता है मुसलमानों के आता है ना, वो कौन सा वो सब इकट्ठे होते जाते हैं, हम इकट्ठे होते जाते हैं, फिर कमायत कयामत का दिन आता है तो वे सब इकट्ठे निकलते हैं और उनका हिसाब किताब होता है। फिर क्या करना, ऐसे ही उनके कहते सिद्ध होते जाते हैं और फिर जब वहां बहुत भीड़ हो जाती है और यहां संसार में खत्म होने लगते हैं जिन्हें मुख जाना है, तो सब इकट्ठे फिर संसार में आ जाएंगे, फिर उसी क्रम से फिर लग जाएगी लैन। मस्करी किल मुक्ता नाम मन्यते पुनरागतम। तो ऐसे ऐसे मानने वाले थे। वो जो मारीच का जीव था वो नियतवादी था, वो सब कुछ नक्की है। अपन जिस तरह विश्वास वाले हैं और जिस तरह प्रतिपादन करते हैं, तो ये सारा जगत अपन को बिल्कुल मारीच का ही शिष्य मानेगा। अपन चारित्र हाथ पैर मारे कि हम नहीं हैं, हम तो पांच समवाय वाले हैं, हम तो कथनचित वाले हैं, हम नहीं हैं, लेकिन भाई आरोप तो वो ही लगाएंगे हैं कौन, तो अपन कौन कहलाए, मारीच वाले। जो नियतवाद का कोई लोग सांख्य कद बता दे मारीच के मत से सांख्य है, तो सांख्य ये दर्शन तो बहुत बाद में हुए, मतलब उस टाइप की चीजें उनके यहां हैं जिस टाइप की सांख्यों में पाई जाती हैं। फिर ले जाएगा जी अपना, हो गया टाइम तो अभी तो एक ही लाइन हुई है। द्रव्य के पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है, उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तियों अच्युत रहती हैं। ये बात हो गई थी ना, इस कारण द्रव्य अनन्य ही है, इसलिए अनन्य पने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, तथाई तथाई है ना उपन, जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में बरतने से जीव नारकत्व त्रियंतत्व मनुष्यत्व देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्य में परिणमित होगा, परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर के भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है क्या? यदि नहीं छोड़ता है तो वह अन्य कैसे हो सकता है जिससे त्रिकोटि सत्ता जिसके प्रकट है, ऐसा वह जीव वही जीव ना हो। सीधी सच्ची बात है कि वो कितना ही बदला है, लेकिन वो जीव जो जितना बदला है ये वही जीव है क्या नहीं है? मारीच से महावीर के में कितने अनुभव हो गए, कितने हो गए, असंख्यात अनुभव हो गए। देखो अब इतना बदल गया, लेकिन अपन को किसी को भी ये शक है कि ये वही का वही रहा होगा, कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया होगा, दो चार गुण कम हो गए होंगे, कि दो चार और बढ़ गए होंगे, इतने भव। अपन को तो ऐसा लगता है बीच के भव जो हैं वो कितनी आसानी से अपन गौण कर देते हैं, यानी वो हैं एक भी कम नहीं होता है। इतिहास भूगोल में बराबर लिखे रहेंगे, वे जब भी पुराण आएगा लिखे होंगे कि उनका लिखा जाएगा, तो सब एक एक भव का हिसाब किताब रहेगा, ऐसा नहीं गिनती में दो चार भूल जाए, केवली के ज्ञान में आएंगे सब, ऐसा नहीं एक ही आदमी जानने वाला हो, ऐसे अनंत केवली हैं जानने वाले हैं। लेकिन अपन कितने होशियार हैं, एक मिनट में गौण कर देते हैं, महावीर बस दो खड़े कर लिए पास पास में, बीमारी जो महावीर राग देश करना हो तो बस महावीर महावीर है और मारीच मारीच है, ऐसा बोलो, अनभीत राग रखने हो तो भैया मारीच ही महावीर है, महावीर ही मारीच है, किससे राग करना, किससे देश करना, ये सब ऐसा ही होता रहेगा। आज का मित्र कल का शत्रु, कल का शत्रु आज का मित्र हो जाता है, इसलिए कोई परमानेंट पर्याय से नहीं होता, निरंतर बदलता रहता है।
नी सुध सरू